ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة لقمان کی آیت نمبر 12 سے اگلی چند آیات میں ایک بہت ہی خوبصورت سا رحمانی قسم کا ایک پلانر ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے پالیں. ہر ایک بچے کو پالتا ہے, مسلم بھی پالتا ہے, نان مسلم بھی پالتا ہے, اور اگر یہ میں کہہ دوں کہ بچوں کو تو جانور بھی پالتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بچوں کی کچھ ایسی ضروریات ہوتی ہیں جو انسان اور جانور پوری کرتے ہیں, مثلا کھلانا پلانا, ان کا تحفظ, گرمی سردی سے بچانا. لیکن اسلام نے ہمارے لیے ایک اور بھی کرائیٹیرین رکھا ہوا ہے, ایک اور معیار بھی ہے کہ ہمارے بچے صرف ہماری دنیا کے لیے نہیں ہیں, ہمارے بچے اصل میں ہماری آخرت کے لیے ہیں. ہمارے یہ بچوں کا سلسلہ اگر اس دنیا تک ہوتا تو چلے ان کی خوشیاں بھی اسی دنیا تک ہوتی اور ان کے غم بھی, اللہ نہ کرے اگر آ جاتے تو آپ دنیا میں ہوتے اور ختم ہو جاتے, اتنا بھی ہوتا تو بہت تھا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ہماری آخرت لگی ہوئی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آپ سے کہہ دے کہ کوئی کام آپ خود ادھر کر لیں, شام تک جو آپ کریں کرائیں گی, اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. دوسری صورت کیا ہے کہ آپ یہ جو کام کریں گی اگلے 5 سال تک اس کا اثر آپ کی زندگی پہ رہے گا, تو ہم مور کیئرفل ہو جائیں گے نا. تو یہ 5 سال تو بہت تھوڑے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت لقمان میں حضرت لقمان نام کی ایک شخصیت کو معیار بنایا. یہ نبی نہیں تھے, لیکن یہاں آپ کے میرے عمل کی ایک بہت بڑی بات ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرنے والا ایک شخص تھا, کہ اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں پیش کر دیا جہاں کے عموماً انبیاء کرام کے قصے آتے ہیں. تو اس سے ایک عمل کی بات جو میرے آپ کے لیے, اچھی تربیت کر کے ہم اپنے بچوں کی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی نگاہوں میں جگہ پا سکتے ہیں. کیا فرماتے ہیں, میں آیتیں رکھوں گی, اگر آپ میں سے کسی کے پاس فون میں قرآن پاک ہے تو آیت 12 سے کھول سکتے ہیں, ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں, کیونکہ میں عادت ہے کہ قرآن کی آیت کے ساتھ ہی بات کرتی ہوں. میری بات کی کیا حیثیت ہے, آپ میری مانیں بھی کیوں, میں بھی تو آپ ہی جیسی ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو قرآن کے ساتھ دیکھیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی, اور حکمت کا عملی اظہار کیا تھا, ان اشکر للہ, کہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. کیونکہ وَمَنْ يَشْكُرْ, اور جو کوئی شکر کرے گا, فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, تو وہ شکر تو اس کے اپنے ہی نفس کو فائدہ دے گا. دو باتیں ہیں, حکمت اور شکر. اگر آپ اس دونوں کو ساتھ رکھ کے دیکھیں تو لقمان جو تھے عرب میں بالکل اسی طرح ایک دانا اور ایک حکیم کی حیثیت سے مشہور تھے جیسے آج ہمارے ہاں علامہ اقبال کو اکثر لوگ حکیم الامت کہتے ہیں، اہل عرب ان کے قصے پڑھتے تھے، صحیفہ لقمان کے نام پر ان کا قصہ موجود تھا، اور ہسٹری سے ملتا ہے کہ لوگ ان کو بہت شوق سے سنتے تھے، ان کی باتوں کو پڑھتے تھے. لیکن جب قرآن آ گیا تو قرآن نے سارے ہی فکشن اور ناول اور ڈائجسٹوں کو بدل دیا، اور اس کی جگہ قرآن میں اتنی لذت آنے لگی کہ باقی کچھ بھی اچھا نہیں لگا. تو یہاں ان کی شخصیت کو بیان کر کے جو پہلی چیز رکھی ہے وہ ہے حکمت. تھوڑی سی بات حکمت پہ کر کے پھر شکر پہ کرتی ہوں، اور جو جو جملہ آتا جائے گا اس کو ہم اپنے اور اپنے بچوں کے ناطے سے دیکھیں گے. سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنے کی ہے وہ حکمت مانگنی ہے. آپ دیکھیے کہ چونکہ یہ رکوع بچوں کی تربیت کے معاملے سے سامنے آتا ہے قرآن پاک میں، حالانکہ اس کے بہت سارے اینگل ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا چاہیے کہ کچھ لوگ پیرنٹس تو بن جاتے ہیں لیکن ان کو بچے پالنے نہیں آتے. آپ دیکھیے کہ ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، بغیر ڈرائیونگ سیکھے آپ کو مجھے کوئی ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھنے دے گا. بیٹھ جائیں، چلانے بھی لگ جائیں، مطلب خود سے آتی بھی ہو، لائسنس نہیں ہوگا تو پکڑے جائیں گے. ایسے ہی ہے نا، کوئی ڈاکٹر کی ڈگری ہوئے بغیر ڈاکٹر کے نام پہ کلینک کھول کے بیٹھ جائے، سزا ملے گی نا. لیکن عجیب بات ہے کہ وہ کام جو 98% لوگوں کو کرنا ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے شادی، اور شادی کے بعد بچے کا پیدا ہونا، کوئی باضابطہ تربیت، کوئی ٹریننگ سینٹر، کوئی پلس مائننگ سکھانے والے ادارے کم ہی دکھتے ہیں، الا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، بچیاں ماؤں کو دیکھ کر گھرداری سیکھ لیتی ہیں، ماں کے طرز زندگی سے بچی بھی متاثر ہوتی ہے، اسی طرح باپ بھی سیکھ لیتے ہیں. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک ماں کی غلطی نسلوں تک جاتی ہے، باپ کی غلطی نسلوں پہ جاتی ہے. تو حکمت کیا ہے؟ چیزوں کو ویسے لیجئے جیسے لینا ہے، جو چیز جتنی ڈالنی ہے. آپ صرف ایک پلاؤ بناتی ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ نمک اتنا جتنا ڈالنا چاہیے، پیاز کو فرائی کتنا کرنا ہے جتنا کرنا چاہیے، یہ ہے حکمت. اور چار گلاس میں آپ 8 گلاس پانی ڈال دیں تو سارے چاول بہنے لگیں گے، یہ حکمت کے خلاف تھا. تو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جب موقع محل کے اعتبار سے ہم ٹریٹ کریں، خوشی کے وقت میں خوش ہوں، غم کے وقت میں غم زدہ ہوں، یہ حکمت کہلاتا ہے. ادھر اگر دیکھیں تو بچوں کے لاڈ کب دیکھنے ہیں، کب ان سے غصہ کرنا ہے، کب ان کو گھورنا ہے، کب اب ان کو ڈانٹنا شروع کر دینا. اسلام نے ہمیں ایک بڑا خوبصورت انداز سکھایا ہے، چھوٹا بچہ بیبی جس کو کہتے ہیں، صرف پیار، لو لو. جب تک بچے کا برین نہیں چلتا ہے، بہت ہی معصوم ہے، اس کو ڈانٹنا، ڈھپٹنا اور ٹارچر کرنا یہ پسندیدہ نہیں، یہ حکمت کے خلاف ہے. تھوڑا سا بچہ آ جائے، بڑا ہو جائے، جیسے 2-3 سال کی عمر میں، اب تربیت کے دن ہوتے ہیں، پیار کے ساتھ تربیت. 7-8 سال کی عمر ہے نا، تربیت لیکن سختی کے ساتھ، جس میں ایک ذرا سا ہاتھ کھینچنے والی کیفیت ہے. اور جو ہی بچے ہو جائیں 12-13 سال کے، آپ کے قد کے برابر، اب پیار کے ساتھ ان سے معاملہ، دوستی، پھر ان کے ساتھ آپ کے خواب شیئر ہوں، وہ آپ سے بے تکلفی کے ساتھ اپنی باتیں کریں، یہ ایک آئیڈیل سی بات ہے. اور 17-18 سال کے ہونے تک اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر چکے، اس کے بعد آپ کو مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہم ان کو دے دیں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ وہ خود بخود اس کی روشنی میں زندگی گزاریں گے. ہمارے ہاں معاملہ اکثر برعکس ہے، جب بچے کو تربیت دینی ہوتی ہے ہم لاڈ دیکھتے ہیں، جب وہ بدتمیز ہو جاتا ہے ہمیں شرمندہ کرتا ہے دوسروں کے سامنے، تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے تانے. اور دیکھا کیا گیا کہ 10-11 سال کا ہوتے ہوئے بچہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. گھر میں کوئی آ جائے پہلے اس کی شکایت، کوئی دین والا آ جائے، کوئی درس والا آ جائے، کوئی مولوی صاحب آ جائے، اس کو سمجھائیں، یہ بڑا خراب، یہ بڑا شریر، یہ ایسا ہے، یہ پڑھتا نہیں، یہ صبح اٹھتا نہیں، یہ نماز نہیں پڑھتا. یعنی بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کی اتنی بے موقع شکایتیں لگاتے ہیں کہ پھر بچے کان بند کر لیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں اب ہم نے اور ہی خراب ہونا ہے. اس کی ایک بڑی خوبصورت ترتیب ہے، بچوں کو سکھانے والی چیزوں میں جو پہلی چیز ادھر لقمان سکھا رہے ہیں وہ ہے نشکر للہ. شکر گزاری کیا ہے؟ آپ کہہ لیجئے کہ شکر گزاری وہ بیج ہے جہاں سے خیر کا درخت اگتا ہے. جب تک میں کسی کی قدردان نہیں ہوں گی، میں اس کی شکر گزار نہیں ہوں گی، میں کبھی بھی اس کی بات نہیں مانوں گی. جب یہ شکر اللہ تعالیٰ کی ذات میں ڈھلتا ہے تو اس کا اظہار عبادات کی صورت میں ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صورت میں ہوتا ہے. जब बच्चा माँ बाप को खुद देखेगा दिन में 5 बार बाप मस्जिद की तरफ भाग रहा है तो ये शुक्र की कमली तस्वीर है। इसी तरह से आप देखिए कि बच्चों को सबसे पहली जो चीज़ आप और मैं सिखा सकते हैं वो कदरदानी है। अपनी भी कदर करवाइए। बास माँ बाप अपने बच्चों की इतनी खिदमत करते हैं, यकीन करें। मैं आज देखती हूँ माँ को, मैं कह सकती हूँ कि आज के माँ बाप अपने बच्चों के लिए जितना कुछ करते हैं, शायद पहले माँ बाप को इतना ख्याल ही नहीं आता था, क्योंकि उनका एक नहीं था, दो नहीं थे, उनके छः छः आठ आठ दस दस बच्चे होते थे, और वो एक ही बच्चा पैदा होता, हर साल एक बच्चा आ रहा है, वो खुद ब खुद ही बहन भाई कर करा लेते थे, माएँ खुद ही पढ़ा लेती थी, करीब की मस्जिद में जाके सपारा पढ़ाते थे, जो प्राइमरी स्कूल था उधर चले जाते थे। अब देखिए पूरी हमारी ज़िंदगी का जो एक लाइफ स्टाइल है ना, वो बच्चों के स्कूल के साथ चलता है। इवन 3 साल के बच्चे को आप डे केयर में भेजते हैं, उसका लाना छोड़ना, उसका लंच बॉक्स, उसका पैसा खर्च, जेब, पूरी ज़िंदगी हमारी इस पे चलती है। अब जब माँ बाप इतना कुछ जो कर रहे हैं तो उसके अच्छे नतायज नज़र आने चाहिए ना। बच्चे रात को माँ बाप के पाँव दबा कर सोएं, प्यार करके सोएं माथे से, आंखें झुकी हों, वक्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा। कुरान में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने कहा कि माँ बाप के सामने अपनी ये जो जिल्लत के बाजू है ना, इसको सुकेड़ के रखो। मुफसरीन कहते हैं जैसे परिंदा उड़ने से पहले अपने सारे पाँव सुकेड़ता है ना, फिर एकदम उठता है। जो बच्चा अपने माँ बाप के सामने इस तरह पर सुकेड़ लेगा, अल्लाह उसको इज्जत के साथ उड़ाएगा। वक़ो रब रहम हुमा कमा रब यानी सगीरा, ये दुआएं भी अल्लाह ने सिखाई हैं। जब हम अपने बच्चों को अपनी भी कदर कैसे सिखाएंगे, हम अल्लाह की करेंगे, वो हमारी करेंगे, बहुत सारे बाद के मसले जो हैं वो हल होंगे। तो बच्चों को इस चीज़ का रियलाइजेशन देना चाहिए कि यू शुड बी थैंकफुल। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनीयुन हमीद, और जो कोई कुफर करेगा तो बेशक अल्लाह ताला बेनियाज भी है और तारीफ़ किया गया। यानी फिर अल्लाह की नाशुक्री करते हो तो कर लो। अच्छा, नाशुक्री कैसे होती है? अक्सर लोग कहते हैं हमें मिला ही क्या है, हमें दिया ही क्या है, फलां को तो इतना अच्छा मिला। आप कभी किसी बच्चे को पूछें मामा कुछ देती हैं? नथिंग। बाबा कुछ दिलाते हैं? नो। यानी बाज़ दफ़ा आदतन भी बच्चे इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो हमेशा समझाएं, बेटा देखो बाबा ये आपके लिए बैग लेकर आए हैं स्कूल का, उनको थैंक यू बोलो, बाबा को किस करो। माँ बच्चे के लिए कपड़े बना रही, इस्त्री कर रही, धो रही, इस्त्री कर रही, ये बाप का फ़र्ज़ बनता है बच्चों से के देखो मामा आपके लिए कितना काम करती हैं, गो हेड हग हर, उसको गले लगाओ, उनके कंधे दबाओ, उनके पाँव का मसाज करो। ये छोटी उम्र, ये देखिए ये बच्चा बैठा है, मेरा ख्याल अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, ये 4 को साल का तो होगा, ऐसे ही है ना, ये है बेहतरीन उम्र इस बच्चे को शुक्रगुजार बनाने की। आप ये लफ्ज़ों से नहीं आएगा बेटा शुक्र करो, बेटा शुक्र करो, शुक्रगुजारी अच्छी, उसको क्या पता क्या होती है। ये आप अपने रवैये से, ये किसने दिया, ये किसने दिलाया, ये कहाँ से आया, बेटा मामा कितना करती है, बाबा कितना, और मामा बाबा के गुण गाए, बाबा मामा के गुण गाए, दादी नानी के गुण गाए, नानी दादी के गुण गाए। ये बच्चा 2-3 साल के बाद सोचेगा मैं मुहसिनों के बीच में रहता हूँ, ये अगर पैदा होते ही मुझे कहीं ट्रैश कैन में डाल आते तो मैं कुछ ना करता। आज जो एक तरबियत में बहुत बड़ा नक्स है कि हम बच्चों को ये एहसास ही नहीं दिला रहे होते कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, इसीलिए फिर वो हल में मजीद और है कुछ और है कुछ। मादा परस्ती में एक बहुत बड़ी लत है, जितना मिलता है थोड़ा लगता है, और जब बाहर का माहौल भी बच्चों को पूरी तरह पैम्पर करने वाला हो, तो जब इस तरीके की बातें हों तो ये गैर महसूस तरीके की बातें हैं। अभी देखिए कि सिर्फ हजरत लुकमान के नाते से बात है, अब बकायदा तरबियत की बात बाप के मुंह से बेटे के लिए शुरू होती है, वह इस काल लुकमान हो, और जब कहा लुकमान ने लिबनी ही अपने बेटे को, वह हुआ याइज़ु हु, और वो उसको नसीहत कर रहा था। यहाँ से एक और पॉइंट नोट करें, बच्चों को नसीहत करनी चाहिए। और फिर यहाँ एक और बात, आज के बापों से माजरत के साथ, बाप का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे को टाइम दे, नसीहत करे, तरबियत करे। बहुत जगह देखा गया कि बापों ने खुद को एक वर्किंग मशीन बना लिया, उनका काम है कमाओ कमाओ कमाओ, बच्चे बेचारे वीकेंड पे ही एक दिन बाप को देख लें तो बड़ी बात है, क्योंकि बाप बच्चों से पहले निकल जाते हैं और बच्चों के सोने के बाद आते हैं घर में, ये भी दुरुस्त रवैया नहीं है। देखिए अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे कनात पे रहें तो आप भी कनात सिखाएं, वो आपको तो दिन रात भाग दौड़ करते इधर उधर भागते देखे, पैसा पैसा माल कमाई, और फ़ोन पे भी बैठे हैं तो उधर क्या भाव है, उधर क्या ताव है, डॉलर कितने का, पाउंड कितने का, वो कैसे बच्चा माल से बेनियाज हो। तो बाप का भी फ़र्ज़ है कि बच्चों को नसीहत करे। क्या नसीहत है? या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ये जो बुनाई का लफ्ज़ है ना, छोटा बच्चा, जैसे उर्दू में हम कहते हैं बचुंगड़े, एक होता है बच्चा, एक होता है बचुंगड़ा, तो या इबन कहने की बजाय या बुनैया, वो मेरे छोटे बच्चे, इस लफ्ज़ से भी पता चलता है, नोट कर लें, कि छोटी ही उम्र में बच्चों को नसीहत करें। हम में से कुछ का ये हाल है, ला माशाल्लाह, जब पानी सर से गुजर जाता फिर चीखते हैं। छोटे बच्चे मना करे, कहते नहीं ना, बच्चा है बच्चा है बच्चा, बदतमीजी करे, चीखे चिल्लाए, बच्चे हैं तो मार धाड़ करे, नहीं बच्चे हैं, ज़रा से बड़े होते हैं हम कहते हैं इट्स ओके, अब नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे, और ज़रा बड़े होके जब जवान होके चीखें, कहते हैं चुप कर जो, जवान खून है, घर से भाग जाएगा। और माजरत के साथ, हम जिन मुल्कों में, दुनिया में इस वक्त पल रहे हैं, यहाँ तो बच्चे को अब हाथ नहीं लगा सकते। आज आप अपने सगे, अपने पैदा किए, जिस बच्चे के आपने पैम्पर्स बदले, जिसको पेट में रखा, फिर आप उसको एक हाथ नहीं लगा सकते। आपका मासूम बच्चा बाहर किसी के ऐसे ही मासूमाना जवाब में, तुम्हारी अम्मी तुम्हें मारती है, वो कहेगा मारती है, तो आपके मेरे लिए फितना बना देगा। इस वक्त में हमें बहुत छोटे उम्र से अपने बच्चों की ऐसी जहन साजी करनी चाहिए कि उनके दिल हमारे साथ जुड़े रहें। फिर उसके बाद देखिए, नसीहतों में बाज़ाब्ता तौर पे पहली नसीहत, ला तुशरिक बिल्लाह, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना। ये क्या बात है, हम तो लोग शिर्क सुन के सोचते हैं, ये तो बड़ी उम्र पे होकर जब एक इंसान पहुंचता है तो फिर शिर्क करता है, क्योंकि हमारे यहाँ शिर्क के लिए क्या मशहूर है। आमतौर पे देखिए, सीरत रसूल में से देखें तो हम मक्का के जो लोकल लोग थे, जो बुत पूजते थे, हम उनको मुशरिक कहते थे, ऐसे ही है ना। और किसी का शिर्क हम क्या कहेंगे कि वो जाके किसी की कब्र पे सजदा करता है। यानी शिर्क की एक मोटी मोटी किस्में हमारे जहन में जो आती है ना, वो बड़ी उम्र के लोगों के साथ आती हैं। सवाल पैदा होता है कि बच्चे को शिर्क से कैसे मना करें। अब मैं आपको इसकी चंद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे सकती हूँ, आप खुद नोट करें कि कहीं आप अपने बच्चों के साथ कोई नासमझी में या अनजानपने में ऐसा शिर्क तो नहीं सिखा रहे। शिर्क कैसे होता है, अब देखिए कि बच्चे के क्या मेरे आपके हर एक के लाशौर में है, एक अल्लाह को पूछना है, उसकी बात माननी, उससे प्यार, उससे मोहब्बत, उसके साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ना है। अब जब अल्लाह सुबहाना ताला के साथ हमारा ये ताल्लुक़ है मोहब्बत का, अब इस ताल्लुक़ को हम दूसरी जगह पे ले आए, तो ये अल्लाह की मोहब्बत में शराकत हो जाएगी। कोई चीज़ देते हैं, ये किसने दी, मामा ने दी। अब बच्चों को सिखाएं, बेटा मामा को किसने कहा, अल्लाह ने मामा के दिल में डाला। बात समझ रहे, अक्सर नेमते जो हम बच्चों को दिलवाते हैं, आप उसका सिरा अल्लाह से जोड़ दीजिए। छोटी छोटी बातें हैं जो इंशाल्लाह उनको इस चीज़ से एहसास दिलाएंगी, जो कुछ मिला अल्लाह ने दिया, बाबा ने दिया, बाबा के दिल में किसने डाला, आपके दिल में किसने प्यार लगाया। पहली माएँ आपको पता है कि सूरज चांद दिखाते, सितारे दिखाते खाना खिलाती थी, और कभी कहती थी मुझ लुक एट द मून, चांद को देखो, सूरज को देखो, हवा किसने चलाई, ये फल फूल किसने बनाए। गैर महसूस तरीके से बच्चे नेचर के नाते अल्लाह का कुर्ब पाते थे। आज क्या हुआ, बंद कमरे, शेंगलेर, बड़े बड़े फानूस, और जो गेम्स और खेलने और म्यूजिक से भरे हुए झुंझुने, अब बच्चे को अल्लाह कहाँ याद आएगा, ये किस कंपनी का, ये एप्पल कंपनी का, ये किसका, ये सैमसंग का, ये नेशनल का, ये फलां। वो बड़े बड़े नाम हमारे बच्चों के दिल पे बैठ जाते हैं, मुझे आपको वो नाम भी नहीं आते होंगे जो हमारे बच्चों को आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। गैर महसूस तरीके से उनके दिल में दुनिया की चीज़ों का रोब आ जाता है। तो हल्के फुल्के अंदाज में बच्चों को अल्लाह की वाहदानियत, और उसका बेहतरीन तरीका है कि जितना मुमकिन हो, हर छुट्टियों में नहीं भी ना, तो हर 1-2 साल के बाद छुट्टियों में बच्चों को उम्रे पे ले जाएं। जाना तो होता ही है, पाकिस्तान ना जाएं, 1 साल उम्रे पे चले जाएं, और पाकिस्तान जाने वालों को तो उम्रा ज़रूरी कर लेना चाहिए। आप कहते हैं डिज्नीलैंड जाना है जी, बच्चे कहते हैं हमने वहाँ जाकर ये करना है, वो करना है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप अपने बच्चों को बैतुल्ला में ले जाएंगे, वहाँ अजानों का होना, सबका भाग के अल्लाह के जाना, और उस घर को दिखाइए, उसके दौरान आप उनको हज़रत इब्राहिम की स्टोरी सुनाइए, कैसे उन बुत परस्त माहौल में थे, तो इंशाल्लाह गैर महसूस तरीके से शिर्क से वो बचेंगे। इन शिर्क अला जुल्म नज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अब ये बात अगर समझ गई, मैं इसको इस एंगल से कर देती हूँ कि अगर आप और मैं अपने बच्चों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत डाल दें, 95% काम आसान होगा। क्योंकि अगली जो चीज़ आ रही है ना, उसका ताल्लुक इसी के साथ है कि ये कहकर अगली जो कही, वह वसई नल इंसान आ, और हमने वसीयत की इंसान को, बीवाली दई ही, कि अपने वालदैन के साथ, हमलत हु मुहु वहनन अला वहन, उठाया उसको उसकी माँ ने कमजोरियों पे कमजोरियां उठा के, वह फिसालुहू फी आमैन, दूध छुड़ाना था उसका 2 सालों में, अनिश्कुर ली वली वालिदई का इलैयल मसीर, ये कि मेरा भी शुक्रगुजार बन और अपने माँ बाप का भी, और मेरी ही तरफ तुझे पलट कर आना है। इस एक आयत में आप देखें दो तीन चीज़ें हैं। माँ बाप बच्चे के लिए कितना अहम रोल अदा करते हैं ये माँ बाप खुद नहीं कह सकते। ये ऐसी है जैसे उस्ताद अगर आके अब उस्ताद के फजाइल बताए, बताने चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो 50 स्टूडेंट में से 5 ज़रूर सोचेंगे ये अपनी बातें कर रहे हैं, ये अपने से जोड़ना चाह रहे हैं, हालांकि जब सब कुछ उस्ताद ने सिखाना है तो उस्ताद की बात भी उसने सिखानी है। आप देखिएगा कि माँ बाप की बात हुई ना तो लुकमान का नाम नहीं आया। तो यहाँ अब अपने अमल की बात लें, बस दफ़ा माएँ एहसान जतलाती हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। पहले दौर में एक मुहावरा था, मुहावरा ही कह लें, मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी, अब वो दूध ही ख़त्म हो गया तो वो मुहावरा भी बदल गया। कुरान कहता है कि 2 साल तक दूध पिलाया छुड़ाया, हम कहते हैं वो तो डब्बे का पिलाया। यानी आज बच्चों के साथ वो एफिलिएशन नहीं रही, लेकिन कम अज़ कम बच्चे को अपनी किसी भी मोहब्बत का या किसी भी नेमत का एहसान का जतलाया करें, कोई दूसरा कह दे, आप खुद ना कहें। और दूसरी बात आप देखिए कि बच्चों के साथ इस तरह का ताल्लुक़ रखना जो हकीकत में उस बच्चे के दिल में आपकी मोहब्बत डाले, उसमें बहुत गहरा रोल किरदार घर वालों का होता है। बाज़ दफ़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, बाज़ दफ़ा सास ससुर साथ होते हैं, नंदे साथ होती हैं, तो माँ बाप कुछ और कहना चाहते हैं, घर वाले लाड देखते हैं बच्चों के, तो बच्चे बाज़ दफ़ा ये समझने लगते हैं कि माँ बाप हमारे दुश्मन हैं। ये सब कुछ बहुत बैलेंस होना चाहिए। सारी बात का खुलासा क्या है? शुक्र सिखा दें, क्योंकि माँ बाप के बारे में एक अलग लेक्चर है इसलिए वो फिर ही बात हो सकती है, लेकिन यहाँ जो बात क्या है, वहीं जाहद कालान तुश्री कभी माँ लई सल कभी इल्म, अगर वो तुझे मजबूर कर दें इस बात पर कि तू मेरे साथ उस चीज़ को शरीक कर जिसका तुझे इल्म नहीं, भला तो ते होमा, तो उन दोनों की बात ना मान, बस साहिब होमा फिर दुनिया मारूफा, लेकिन दुनियावी मामलात में उनके साथ बहुत अच्छे रहो। वत तभी सबील मनानाब, लेकिन पैरवी उसी की करो जो मेरी तरफ झुके, इलैया मेरी तरफ, सुम्मा फिर इलैया मर्जियुकुम, तुम सब ने मेरी तरफ आना है, फनबियुकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर मैं तुम्हें खबर दूंगा उसकी जो तुम अमल करते आए। बहुत बड़ा असूल इसमें बता दिया। बस दफ़ा माँ बाप और बच्चों में इख्तलाफ़ राय हो जाता है, अब बचपन में नहीं बच्चा बड़ा हो गया, माँ बाप बच्चे के लिए कुछ और डिसाइड करते हैं, बच्चा कुछ और चाहता है, बेटी के लिए कहीं और रिश्ता ढूंढा, वो कहती है मुझे वहाँ नहीं करना, है कि नहीं ये बात? बाज़ दफ़ा आप देखिए हमारे इस कल्चर में ऐसा है, मरहले 25 या 30-30 साल के बेटे बेटियाँ हो जाते हैं, रिश्ते नहीं होते, क्यों? माँ बाप चाहते हैं हमने अपने मुल्क में करना है, बच्चे कहते हैं हमने इधर करना है, वो कहते हैं ख़ानदान में करना है, ये कहते हैं सारी दुनिया ही अपना ख़ानदान है, वो कहते हैं अपनी बिरादरी ज़ात में करना, इस तरह के इशू है ना। इन आयात में अल्लाह ने उसका हल दिया, करना क्या चाहिए। देखिए मुझसे एक सिस्टर ने बात की, बहुत पहले की बात है, और मैं उन्हीं का सदका जारिया बनाते हुए इस बात को जिक्र करती हूँ, कहने लगी, और ये हकीकी वाक्य है, उन्होंने अपने बेटे की शादी गालिबन अपने किसी करीबी रिश्तेदार, यानी या बाप की बहन होगी या माँ की बहन थी, उनके साथ की। अब वो जिससे की ना, वो लड़की निस्बतन दीनदार जहन की थी, लड़का लाउबाली था जैसे अमूमन इस उम्र में होते हैं। खैर पहले भी उसने कुछ रिजिस्ट किया होगा, लेकिन जो हमारे यहाँ बड़ों की बात होती है, लड़की घर आएगी तो ठीक हो जाएगा। खैर किस्सा मुख्तसर, शादी हो गई। वो लड़का एक किस्म का फोर्स्ड था, फोर्स्ड मीन के उसको मजबूर किया गया शादी पे। खैर शादी हुई, जो भी हुआ उसके बाद, लेकिन वो लड़का उस लड़की के साथ खुश नहीं था, हालांकि लड़की बहुत अच्छी थी, इसमें किसी को भी शक नहीं था। तो उसकी माँ ने जब ये सवाल मेरे पूछा या मेरे सामने ये बात आई, कहने लगी कि उस लड़की में कमी क्या है? मैंने कहा एक बात बताएं, कहता क्या है, कोई ना कोई ऐप कोई नक्स तो होगा ना। तो कहने लगी कि उस वक़्त की हीरोइन, मैं नाम नहीं लूँगी हालांकि मुझे अभी भी याद है, बड़ी मारूफ थी इंडियन फिल्मों की एक एक्ट्रेस थी, कहने लगी मुझे कहता है कि उस जैसी चाहिए मुझे। तो तौबा तौबा, हमारे ऊपर जो ज्यादती हो गई, ये हो गया वो हो गया। अब मेरे दिल का सवाल है, मैंने उनसे पूछा कि नहीं पूछा, लेकिन आपसे तो पूछ सकती हूँ, ये दिखाई किसने थी हीरोइन, किसने दिखाई बच्चे को? और ये उस दौर की बात है जब घरों में लोग सिर्फ VCR पे फिल्में देखते थे, ये मोबाइलों में नहीं थी फिल्में, और YouTube पे क्लिक पे आप हज़ारों चीज़ें नहीं देख सकते थे, यानी आप तो हर एक का अपना TV है ना, अपनी चॉइस का। तब घर में बाप ही लाते थे और बच्चे बैठ के देखते थे। तो याद रखिएगा, घर का माहौल बच्चे के ऊपर असरअंदाज होता है। हम अपने बच्चों की ज़हनी तरबियत अगर वक्त से पहले कर चुके होंगे ना, तो फिर वक्त आने पे चोट नहीं पड़ेगी। एक तरफ ऐसे भी लोग हैं कि जिन बच्चों को माँ बाप की कदर सिखाई गई बचपन से, वो कहते हैं हमें पसंद है कि नहीं, लेकिन हम आपके हुक्म के मुताबिक जिएंगे। तो याद रखिए, हमारी असल निजात ये है कि हम खुद और हमारे बच्चे ला तुशरिक बिल्लाही शैया, अल्लाह के साथ जुड़े हों। और ये चीज़ आती है अल्लाह की किताब से। कुरान का सबसे बुनियादी मौजू तौहीद है, और इंसानी मामलात में जिस मामले को सबसे ऊपर किया गया ना, वो माँ बाप का मामला है। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ, जिन बच्चों की तरबियत बचपन से इस्लाम के एक शऊर के साथ की जाती है, वो अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ते हैं। वो अपने माँ बाप की खुशी की खातिर बहुत कुछ करते हैं। तो अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें फिक्र नहीं है इस बात की, लेकिन आज से ये बात जहन में रखिए कि अगर हम अपने बच्चों को रब से जोड़ेंगे, अल्लाह उनके दिलों में हमारी मोहब्बत डालेगा। आज हमने अपने कुछ बच्चों को कटी हुई पतंगों की तरह छोड़ दिया, वक्त और माहौल के बेअसर हाथों में दे दिया। नतीजा क्या निकला कि वो अल्लाह के साथ दूर तो हुए, वो हमसे भी दूर हो गए। आज बच्चे साफ कहते हैं इट्स ओके, मैं आप लोगों के बच्चों को नहीं जानती, जा रहा है आप मेरे लिए नए हैं। लेकिन फी जमाना मैंने जो मारूफ तरीका देखा है, जो आपको अपने पेरेंट्स से मोहब्बत महसूस होती होगी ना, शायद ही आपके बच्चों को इस तरह की होती हो। हालांकि आप ज़्यादा कर रहे हैं, आपके माँ बाप ने आपके लिए बज़ाहर उतना कुछ नहीं किया, बट आज भी दूर बैठ के भी आपके आंसू नहीं निकलते, छोटी छोटी बात पे आप परेशान नहीं हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे बेटियाँ, बेटी कितना दर्द बांटती है। वो किसी की कहावत थी कि कोई किसी जगह रहता था, तो चंद दिन के बाद पता चला वो तो फौत हो गया। तो हम सायों ने, गली मोहल्ले ने कहा, अरे हमें पता क्यों नहीं चला? कहा इसलिए कि उसकी बेटी नहीं थी। बेटी होती को रोती धोती आवाज़ आती तो तुम भी जान लेते, वो तो बेटे थे, उनको पता नहीं कहाँ से ओल्ड होम से बाहर छोड़ आए होंगे। तो याद रखिए, हमारी सब की आखिरी निजात अल्लाह की बात से जुड़ने और जोड़ने में। जैसे घर कितना भी ऊंचा हो, बाहर जाने के लिए सीढ़ियों से ही गुजरना पड़ता है। ताल्लुक़ बिल्लाह की, ताल्लुक़ बिल कुरान की, इस्लाम की, अच्छी तरबियत की सीढ़ियों से गुजारेंगे तो ये बच्चे इंशाल्लाह हमारी आंखों की ठंडक बनेंगे।